مکابیین کی دوسری کتاب، بارہواں باب، مختلف فتوحات۔
بعد اس کے کہ یہ عہد و پیمان ٹھہرائے گئے، لوسیاس بادشاہ کے پاس گیا اور یہودی کاشتکاری کرنے لگ گئے، لیکن ان علاقوں کے سالاروں میں سے تیمتاؤس اور اپلونس بن جنوس اور ہیرونمس اور دیموفون اور ایسا ہی کپروسیوں کا سردار نیکانور انہیں امن و امان سے نہیں رہنے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل یافا نے ایک نہایت بڑا جرم کیا، انہوں نے ان یہودیوں کو جو ان کے درمیان بستے تھے تواضع کی کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں سمیت ان کشتیوں میں جو ان کے لیے تیار کی گئی ہیں سوار ہو جائیں، گویا کہ ان کے حق میں حق کسی قسم کی بدنیت نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ سارے شہر کے لوگوں کی منظوری سے تھا تو یہودی اس پر راضی ہو گئے، کیونکہ وہ صلح پسند تھے اور انہیں کچھ شک نہ تھا۔ لیکن جب سمندر کے وسط میں پہنچے تو غرق کر دیے گئے، اور ان کی تعداد کم سے کم 200 تھی۔ جب یہودا کو خبر پہنچی کہ میرے ہم قوموں کے ساتھ کیسی وحشیانہ بے رحمی کی گئی ہے، تو اس نے اپنے ساتھ کے آدمیوں کو طلب کیا اور خدائے منصف عادل سے دعا کر کے اپنے بھائیوں کے قاتلوں کے خلاف کوچ کیا اور رات کے وقت بندرگاہ میں آگ لگا دی اور کشتیوں کو جلا دیا اور ان کے اندر کے پناہ لینے والوں کو تلوار کی دھار سے مارا۔ لیکن چونکہ شہر بند کیا ہوا تھا تو وہ وہاں سے اس ارادے سے چلا گیا کہ واپس آ کر اہل یافا کے شہر کو نیست و نابود کر دوں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اہل یبنا ان یہودیوں سے جو ان کے درمیان بستے ہیں ویسا ہی کرنے کا قصد رکھتے ہیں، تو اس نے رات کے وقت اہل یبنا پر حملہ کیا اور بندرگاہ معا جہازوں کے جلا دی، یہاں تک کہ آگ کی روشنی یروشلم میں بھی نظر آئی جو 240 گلوا کے فاصلے پر ہے۔ جب وہ تیمتاؤس کے خلاف کوچ کر کے 9 گلوا کی مسافت تک پہنچے تو عربیوں نے ان پر حملہ کر دیا، جن کی تعداد تخمیناً 5,000 پیادوں اور 500 سواروں کی تھی، اور بڑی سخت باہمی لڑائی ہوئی۔ پر خدا کی مدد سے یہودا کے ساتھیوں کی فتح رہی اور بادیا پیما عربیوں نے شکست کھا کر یہودا سے صلح کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ ہم معاشی دیں گے اور ہر طرح کا فائدہ تمہیں پہنچائیں گے۔ اور چونکہ یہودا نے گمان کیا کہ یقیناً ان سے بہت فوائد حاصل کرے، تو وہ ان سے صلح کرنے کے لیے رضامند ہو گیا اور عہد باندھا، اور وہ پھر اپنے خیموں کی طرف واپس چلے گئے۔ اور یہودا نے قصفین نام ایک شہر پر حملہ کیا جس کے گرد مورچے اور فصیلیں تھیں اور جہاں مختلف قوموں کے لوگ بستے تھے، اور جو اس کے اندر تھے وہ دیواروں کی مضبوطی اور رسد کی کثرت پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہودا کے ساتھیوں کے ساتھ بے سلیقگی سے پیش آئے اور ان کی توہین کر کے کفر گوئیاں اور ناواجب باتیں کہنی شروع کیں۔ तब यहूदा के साथियों ने अजीम सुल्तान ने कोनैन से दुआ की, जिसने यूशुआ के जमाने में यरहू को बगैर कलों और मंजनीकों के गिरा दिया था, और फिर वो फसील पर शेरों की मानंद कूद पड़े और खुदा की मर्जी से शहर को फतह कर लिया, और उन्होंने नाकाबले बयान खूनरेजी की, यहां तक कि वहां का डाबर जो दो गलवा चौड़ा है बहाए खून से भरा हुआ मालूम होता था। वहां से वो 750 गलवा की मुसाफत जाकर खरकिस में उन यहूदियों के पास पहुंचे जो तूबी कहलाते थे, पर उन मुकामों में उन्हें तैमताउस न मिला, क्योंकि वो कुछ किए बगैर वहां से चला गया हुआ था। लेकिन वो एक जगह में नहायत ताकतवर हिरासती फौज छोड़ गया था। 200 और 170 मकाबी के सरे लश्कर उस तरफ गए, और उन्होंने उन्हें जो तैमाताउस ने कले में छोड़े थे, यानी तकरीबन 10,000 मर्दों को कत्ल किया।
और मकाबी ने अपने लश्कर के फरीक बनाए और उनके सरदार मुकर्रर किए और तैमोताउस पर हमला किया, जिसके साथ 120,000 प्यादे और 2,500 सवार थे। जब तैमोताउस को यहूदा के आने की खबर मिली तो उसने औरतों और बच्चों और सब बाकी असबाब को करनाइम नाम एक मुकाम को भेजा, इसलिए कि वो जगह नाकाबले तस्खीर और दुश्वार गुजार थी, क्योंकि हर तरफ की घाटियां तंग थीं। जब यहूदा के लश्कर का पहला फरीक दिखाई दिया तो दुश्मनों को अलबसीर के जहूर से दहशत हुई और कपकपी लगी, यहां तक कि वो भाग निकले और किसी के इधर और किसी के उधर दौड़ने के सबब से अक्सर दफा एक दूसरे को जख्मी करने और अपनी ही तलवारों से छेदने लगे, और यहूदा ने बड़ी तुंदी से उनका ताकुब किया और काफिरों को छेदता रहा, और उनमें से तकरीबन 30,000 मर्दों को हलाक किया। और तैमोताउस, दोस्त याउस और सोस पत्रस के हाथ में पड़ गया, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से उनकी मिन्नत करनी शुरू की कि उसे जिंदा छोड़ दें, और उसने बहाना किया कि तुम में से किसी के मां बाप, किसी के भाई मेरे हाथ में हैं, और अगर मैं कत्ल किया जाऊं तो उनकी बहुत बुरी हालत होगी। और जब उसने बहुत सी बातों से उन्हें यकीन दिलाया कि वो उन्हें सही सलामत वापस कर देगा, तो उन्होंने उसके वादे पर अपने भाइयों की रिहाई की खातिर उसे जाने दिया। और यहूदा ने करनाइम और मामन इश्तारित में जाकर 25,000 आदमियों को कत्ल किया। उनके शिकस्त पाने और हलाक होने के बाद यहूदा ने हसीनदार शहर इफरून पर यूरिश की, जहां लूसियास रहता था, शहर पनाह के सामने दलेर नौजवान सफ आरा थे, जो खूब लड़ते थे और अंदर बहुत सी कीलें और मंजनीक थे। लेकिन यहूदियों ने कादरे मुतलिक से दुआ की, जो अपनी कुदरत से दुश्मन की कुव्वत को तोड़ देता है, और उन्होंने शहर को ले लिया, और उनमें से जो वहां थे तकरीबन 25,000 फर्शे जमीन कर दिए। उन्होंने वहां से रवाना होकर इस्कुतोपुलिस की तरफ तेजी से कूच किया, जो यरूशलेम से 600 गलवा के फासले पर है। लेकिन उन यहूदियों ने जो वहां बसते थे गवाही दी कि अहले इस्कुतोपुलिस हम पर हर वक्त मेहरबान रहे हैं, और तंगी के वक्त में भी हमसे नेक सलूक करते रहे हैं। तो उन्होंने उनकी शुक्रगुजारी की और उनसे दरख्वास्त की कि आइंदा भी उनसे वैसी ही रफाकत रखें। और वो हफ्तों की ईद के करीब यरूशलेम में आ गए, और उस ईद के बाद, जिसे ईदे खमसीन कहते हैं, उन्होंने इद्दूम के सालार जुर्जियास पर चढ़ाई की, जो 3,000 पियादों और 400 सवारों के साथ उनके मुकाबले में आया। और जब उन्होंने हमला किया तो यहूदियों के चंद आदमी मारे गए, लेकिन तूबियों में से दोसीताउस, एक बहादुर शाह सवार, ने जुर्जियास को पाकर उसके जुब्बे को पकड़ लिया, और इस इरादे से कि उस मलऊन को जिंदा गिरफ्तार करे, जोर से उसे घसीटने लगा। पर तराकी सवारों में से किसी ने झपट कर उसका कंधा काट डाला। यूं जुर्जियास मरीशा की तरफ भाग निकला। इतने में अजरिया के हमराही, इस सबब से के लड़ाई बहुत देर तक होती रही, थकने लगे। इसलिए यहूदा ने खुदावंद से फरियाद की कि अपने आप को उनका मुआवन और जंग में उनका हादी जाहिर करे। और उसने अपनी मादरी जुबान में बा आवाज़े बुलंद तराना गाया और जंगी नारा मारा, और जुर्जियास पर नागहा हमलावर होकर उन्हें शिकस्त दी।
मरहूमों के लिए इल्तजा। इसके बाद यहूदा ने अपना लश्कर जमा किया और उससे अदुलाम शहर को ले गया, और चूंकि सातवां दिन आया, इसलिए उन्होंने हसब ज़ाब्ता अपने आप को पाक किया और वहीं सबत मनाया। और दूसरे दिन इसलिए कि वक्त तंग होने लगा, यहूदा के साथी गए ताकि मकतूलों की लाशें ले जाएं और उनके आबाई कब्रों में उनके रिश्तेदारों के साथ उन्हें दफन करें। लेकिन उन्होंने उन मकतूलों में से हर एक के कपड़ों के नीचे यबना के बुतों के तावीज पाए, जिनसे किसी भी किस्म का वास्ता रखना शरीयत यहूदियों को मना करती है। पर सब पर जाहिर हो गया कि इनके मारे जाने का यही सबब था। इसलिए سب نے پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے والے، خداوند منصف عادل کے اس کام کی تحسین کی۔ پھر انہوں نے دعا اور التجا کی کہ یہ خطا سراسر معاف کی جائے، اور شریف یہودا نے لوگوں کو نصیحت کی کہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکے ہو کہ مقتولوں کی خطا کا کیا نتیجہ ہوا ہے، بس اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائے رکھو۔ پھر اس نے ہر ایک سے چندہ اکٹھا کیا، یعنی تقریباً 2000 درہم چاندی، جو اس نے یروشلم بھیج دی تاکہ خطا کے لیے قربانی گزرانی جائے۔ یوں اس نے قیامت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی نیکی اور دینداری کا کام کیا، کیونکہ اگر اسے امید نہ ہوتی کہ مقتولوں کی قیامت ہوگی تو مردوں کے لیے دعا کرنا بے جا اور باطل ہوتا۔ اس لیے اس عمدہ ثواب پر غور کر کے جو دینداری میں سوئے ہوئوں کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، یقیناً یہ خیال پاک اور نیک ہے۔ اس نے کفارے کے لیے قربانی چڑھائی تاکہ وہ اپنے گناہ سے رہائی پائیں۔